सुहासिनी जी ने इप्सिता को घूरते हुए कहा, हम यहाँ ब्रांड की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजवंश महल में जा रहे हैं, इस बात का तुम दोनों ध्यान रखना। और नंदिनी बेटा, आई होप आप हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी आंटी, मैं जानती हूँ हर माँ को अपनी बेटी के ससुराल को लेकर टेंशन होती है, मैं समझ गई आपकी बात और मैं ईशु को भी समझा दूंगी। वहीं पर सामने खड़ी इप्सिता नंदिनी को घूरते हुए देख रही थी। इप्सिता की माँ उन दोनों को ये बातें समझाकर वहां से गई। तुरंत ही नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने बिठाते हुए कहा, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, चलो बैठो, फटाफट रेडी हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि हम लेट हों, और वैसे भी मैं तो तेरा ससुराल देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंदिनी जितनी एक्साइटमेंट दिखा रही थी, असल में उतनी एक्साइटेड वो लग नहीं रही थी, और इप्सिता को भी समझ आ रहा था कि उसकी माँ की बातों की वजह से नंदिनी का थोड़ा बहुत मूड खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराहट के पीछे उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। इप्सिता ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ यार, रेडी हो जाऊंगी, इतनी जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ राजवंश महल में अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी रानी सा ने उसे रोकते हुए कहा, अभिमन्यु कहाँ जा रहे हैं आप, रुकिए यहाँ, हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभिमन्यु रानी सा की बात सुनकर उनके पास जाकर बोला, जी मासा, क्या बात है, और हम तो ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ कुछ जरूरी मीटिंग है इसलिए। मासा ने अभिमन्यु को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए, और आज आपकी जितनी भी मीटिंग्स हैं उन्हें कल के लिए शिफ्ट कर दीजिए। अभिमन्यु थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोला, लेकिन क्यों मासा, आज आप हमें मीटिंग शिफ्ट करने के लिए क्यों बोल रही हैं? मासा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि हमने आज इप्सिता के माँ बाप को यहाँ पर आप दोनों की शादी की बातचीत के लिए बुलाया है। आप जानते ही हैं अभिमन्यु, हमें जल्दी ही शादी करनी है और हम बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आज जब वे लोग यहाँ आएं तो आप यहीं पर रहें। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है मासा, हम अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु फोन पर किसी से बात करने के लिए साइड में चले गए। थोड़ी ही देर में इप्सिता को नंदिनी ने रेडी किया और खुद भी फटाफट रेडी होकर वे दोनों नीचे आईं। सुहासिनी जी राजमहल ले जाने वाले सारे गिफ्ट को देख रही थीं और उन्होंने उन सारे गिफ्ट को कार में रखने के लिए कहा। उदय ने अंदर जाकर नंदिनी और इप्सिता को देखा, वे दोनों ही रेडी थीं और दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थीं। उदय इप्सिता को देखकर उसके पास आया और उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है मेरी बहन अपने ससुराल वालों को डराकर ही मानेगी। उदय की ये बात सुनकर नंदिनी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इप्सिता ने नंदिनी के कान में धीमे से कहा, तुम भाई की बातों का ध्यान मत दो, वो हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर हंसने लगी। सुहासिनी जी के फोन पर किसी का फोन आया, उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, जी रानी सा, हम सब बस निकल रहे हैं, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। इप्सिता के पिता वहां आए और उन्होंने उन सब की तरफ देखकर कहा, उदय बेटा, आप इप्सिता और नंदिनी को लेकर चलिए, हम और आपकी मम्मी दूसरी कार से आते हैं। सुहासिनी जी ने इप्सिता के पिता के पास जाकर कहा, हमें जल्दी चलना होगा, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इप्सिता के पिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, चलिए उदय, हमें लेट नहीं होना है। उदय ने नंदिनी और इप्सिता को अपने साथ चलने के लिए कहा। इप्सिता की माँ के साथ एक कार में और उदय, नंदिनी और इप्सिता एक कार में बैठे। थोड़ी ही देर में वे सब राजवंश महल पहुंचे और वहां पर उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत हुआ। रानी सा ने सुहासिनी जी को अपने गले लगाते हुए कहा, माफी चाहेंगी, हमने आपको इस तरह इतना अर्जेंट में बुलाया। सुहासिनी जी मुस्कुराकर बोली, कैसी बात कर रही हैं आप रानी सा, ऐसा बोलकर तो आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अभिमन्यु इप्सिता के माँ बाप के सामने आकर उनके पैर छूने के लिए झुका तो दोनों ने ही अभिमन्यु को पकड़ते हुए कहा, अरे कुंवर सा, क्या कर रहे हैं आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद तो वैसे भी हमेशा आपके साथ है। इतना बोलकर इप्सिता के पिता ने अभिमन्यु को गले लगा लिया। ये सब कुछ देखकर इप्सिता भी रानी सा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने भी इप्सिता को अपने गले लगाते हुए कहा, आइए इप्सिता, आपके ससुराल में आपका स्वागत है। नंदिनी चुपचाप इप्सिता के पीछे पीछे चल रही थी और वे सब अंदर की तरफ आने लगे। नंदिनी ने इप्सिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, यार इप्सिता, मैं तो ये देखकर ही हैरान हूँ, ये तो सचमुच में राजा महाराजाओं के जैसा महल लग रहा है। यार सच में तुझे तो जैकपॉट लगा है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, ये महल कितना शानदार और खूबसूरत है। इप्सिता नंदिनी की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि इप्सिता को इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वहीं अभिमन्यु उदय के साथ बातें करता हुआ आगे की तरफ चल रहा था और इसी बीच अर्पिता इप्सिता के पास आकर बोली, भाभी सा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अर्पिता इप्सिता से बात कर रही थी और वहीं अर्पिता का पति जयराज नंदिनी को देख रहा था, लेकिन नंदिनी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो अभी तक महल की खूबसूरती ही निहार रही थी। सब महल में ही बने बड़े से हॉल में आकर बैठे और उनकी बड़ी ही अच्छी तरह से खातिरदारी की गई। थोड़ी देर बाद मासा ने अर्पिता और इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता जाइए और अपनी भाभी सा को महल दिखा कर लाइए। अर्पिता मुस्कुराते हुए इप्सिता के पास आकर बोली, भाभी सा आप हमारे साथ चलिए। इप्सिता नंदिनी की तरफ देख रही थी और नंदिनी जैसे ही उठने वाली थी कि सुहासिनी जी ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने इप्सिता के कान में धीमे से कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रही है तू? वैसे भी अर्पिता कितनी अच्छी है तो उनके साथ बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। नंदिनी अपनी जगह से उठकर खड़ी नहीं हुई और इप्सिता को अकेले ही अर्पिता के साथ जाना पड़ा। इप्सिता अर्पिता के साथ आगे की तरफ जाते हुए पूरा महल देख रही थी। अर्पिता ने काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हुए कहा, भाभी सा हम सबसे पहले आपको अभिमन्यु भाई सा के कमरे में ले चलते हैं और वैसे भी शादी के बाद आपको वहीं तो रहना है। इप्सिता अर्पिता की बात सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी। इतना बोलकर अर्पिता उसे अभिमन्यु के कमरे में ले गई। अभिमन्यु का कमरा काफी ज्यादा बड़ा था और अंदर से हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। इप्सिता ने देखा वहां कई सारी तलवारें थी जो दीवार पर रखी हुई थी। उन्हें देखकर इप्सिता एक दीवार के सामने रुक गई। अर्पिता ने काफी एक्साइटेड होते हुए उसे बताया, भाई साहब को तलवार चलाने का बहुत शौक था बचपन से ही और वो शौक उनका अभी तक नहीं गया है। ये सारी भाई की ही कलेक्शन है। अर्पिता इप्सिता को महल घुमा रही थी और काफी सारी चीजें बता रही थी, लेकिन इप्सिता बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे महल देखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अर्पिता इप्सिता को इतना चुप देखकर धीमे से बोली, भाभी सा क्या हम आपको बोर कर रहे हैं? इप्सिता ने अर्पिता की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। अर्पिता ने पूछा, अच्छा तो आप भी हमें अपने बारे में कुछ बताइए। इप्सिता अर्पिता से बात करने लगी और वहीं उदय अभिमन्यु से खड़ा कुछ बातें कर रहा था। नंदिनी वहीं चुपचाप बैठी थी। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई लेकिन उसे इप्सिता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नंदिनी अपने मन में बोली, इतना बड़ा महल है, यहाँ पर तो मैं ईशू को ढूंढ भी नहीं पाऊंगी और पता नहीं उसकी ननद उसे कहाँ लेकर गई है।
नंदिनी चारों तरफ देख रही थी और तभी उसकी नजर अर्पिता के पति जयराज पर गई, जो वहीं सामने बैठा उसे घूरते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्रमशः